नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ने लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7% रहने का अनुमान। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मतदान केंद्रवार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। अगले 3 वर्ष में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और देश में अधिक रोजगार सृजन का वायदा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा।
द रिजर्व बैंक एमपीसी डिसाइडेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 5-1 टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। कॉन्सिक्वेंटली द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दैट इज द एसडीएफ रेट रिमेन्स एट 6.25%।
श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% पर रहने की संभावना है। पहली तिमाही में इसके 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9% और तीसरी तथा चौथी तिमाही में 7% पर बने रहने का अनुमान है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौजूदा वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% पर रहने की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 के 7.8% की तुलना में मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी आई है, लेकिन अब भी यह सरकार के 4% के लक्ष्य से अधिक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645.60 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पिछले 3 वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपये में सबसे कम उतार चढ़ाव रहा। इस दौरान विश्व की प्रमुख मुद्राओं में रुपया सर्वाधिक स्थिर रहा।
भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नकद राशि जमा कराने की सुविधा लाने जा रहा है। फिलहाल यूपीआई का इस्तेमाल पैसा निकालने और अंतरित करने के लिए किया जाता है। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को नकदी जमा कराने में आसानी होगी, जिससे बैंकों की नकदी लेन देन प्रक्रिया और सक्षम होगी। आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान माध्यम पीपीआई वॉलेट से यूपीआई भुगतान के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है। इससे उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी और छोटी लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के निगम आयुक्तों और चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रवार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यनीतियां बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज नई दिल्ली में उन 11 राज्यों के निगमायुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की जहां पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। बैठक का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को इस प्रकार काम करने का निर्देश दिया है जिससे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी से गौरवान्वित महसूस करें। उन्होंने ऐसे प्रयासों की अपील की है जिसमें लोग मतदान के लिए स्वयं प्रेरित हो। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदान वाले 215 ग्रामीण और 51 शहरी संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने त्रिसूत्रीय रणनीति पर बल दिया। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाना, लक्षित ढंग से मतदाताओं तक पहुंचना तथा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल करना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के निगम आयुक्त तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित जिलों के चुनाव अधिकारी विचार विमर्श में शामिल हुए। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली भाग लिया।
कर्नाटक में निर्वाचन साक्षरता क्लबों ने चुनाव में सहभागिता से संबंधित साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रचार किया है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा निर्वाचक सहभागिता स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य चुनाव सहभागिता पर जोर देना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीप नोडल अधिकारी पीएस वस्त्राद ने कहा कि राज्य में 25,000 निर्वाचन साक्षरता क्लबों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को शिक्षित किया है।
Amongst the sweep, if you see, we have 25,000 electoral literacy clubs in all our high schools, junior colleges, degree colleges and up to the university. And this has been in force since 2019. So the young future voters, young voters, new voters, they are all part of this and they have been continuously exposed for the whole academic year about electoral literacy. And to further to strengthen that, we have had competitions for them throughout the year, essay writing, painting, then quiz competition. So the children are knowing very well about all the electoral information.
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyayar.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonyayar पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए दशकों से लंबित मूलभूत जरूरतों को पूरा किया है। श्री मोदी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के चुरू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में विकसित भारत की आधारशिला रखी जा चुकी है।
आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने ईमानदारी से काम किया जिसकी वजह से राष्ट्र तेजी से तरक्की कर रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया। एक रिपोर्ट।
घोषणा पत्र में प्रतिदिन 400 रूपये की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1,00,000 रूपये, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण का वायदा किया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना के वायदे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस ने अगले दशक में 23 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार लाकर गरीबी समाप्त करने का भी वायदा किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र पंच न्याय यानी न्याय के 5 स्तंभों पर आधारित है।
राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी और इसकी गारंटी भी हमने दी है।
बिहार का जमुई संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव के पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट इस सीट से चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए के खिलाफ महिला उम्मीदवार को नामित किया है। इस सीट पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। एक रिपोर्ट।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जमुई संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करके राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। इस संसदीय क्षेत्र में मुख्य मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होने के आसार है। 2014 और 2019 में इस क्षेत्र से लगातार 2 बार निर्वाचित होने के बाद मौजूदा सांसद चिराग पासवान ने अपना क्षेत्र बदलकर हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जमुई से इस बार उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया है, जो पहली बार चुनावी अखाड़े में हैं। दूसरी ओर महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल ने भी पहली बार चुनाव लड़ रही अर्चना रविदास पर भरोसा जताया है। कल कारखानों की कमी, उद्योग धंधों का अभाव और बेरोजगारी इस क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, जिनकी कसौटी पर 19 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन कार्य कल संपन्न हो गया। प्रमुख प्रत्याशियों में जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमार स्वामी, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने कल पर्चे भरे। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य भागों के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होंगे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को उनके इस आरोप पर नोटिस जारी किया है कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पेशकश की गई थी। उन्हें सोमवार दोपहर तक जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि मतदाता नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयानों पर विश्वास करते हैं और इस प्रकार उनके बयानों का चुनाव प्रचार पर असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में डाला गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सांसद मगुंथा रेड्डी को केजरीवाल के खिलाफ गलत बयान देने के लिए कहा गया था और जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता आबकारी नेते मामले में लगातार भ्रामक बयान दे रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से पराजित किया। जर्मन ओपन स्क्वैश में राष्ट्रीय चैंपियन वेलावन सेंथिल कुमार कल हैम्बर्ग में खेले गए मैच में 3-1 से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सेंथिल कुमार ने इंग्लैंड के 8 वरीयता प्राप्त जॉर्ज पार्कर को 11-5, 11-8, 9-11, 11-9 से हरा दिया। 2023 के एशियाई एकल रजत पदक विजेता सेंथिल कुमार ने 61 मिनट में शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में वेलावन का सामना विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के इवान यो एनर्जी से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच महादीपुर सोना मस्जिद बंदरगाह से होने वाला व्यापार ईद और पोयला बैशाख को देखते हुए 8 अप्रैल से 1 सप्ताह के लिए बंद रहेगा। पोयला बैशाख बंगाली पंचांग का पहला दिन है, जो बांग्लादेश का आधिकारिक कैलेंडर भी है। इस दौरान बंदरगाह से यात्रियों की आवाजाही सामान्य रहेगी। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 2 दिन के लिए गर्म हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कल तक गर्म हवाएं चलने की आशंका है। रविवार तक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज बारिश और तूफान जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा। मौजूदा वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7% रहने का अनुमान। निर्वाचन आयोग की मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक। मतदान केंद्रवार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।